आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
जुलाई 2014 में एम्स्टर्डम से क्वालालंपुर जाने वाली एक वाणिज्यिक यानी कमर्शियल उड़ान मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट MH17 को पूर्वी यूक्रेन के ऊपर मार गिराया गया था, जिससे उसमें सवार सभी 253 लोग मारे गए थे, जिनमें 38 ऑस्ट्रेलियाई भी शामिल थे। उस समय रशिया के समर्थन के साथ कीव विरोधी अलगाववादी क्रीमिया पर रूसी आक्रमण और उसके राज्य हरण के बाद यूक्रेनी सेना से लड़ रहे थे। रशिया समर्थित इन अलगाववादियों ने ही रशिया निर्मित मिसाइल का इस्तेमाल करके बोइंग 777 को मार गिराया था। अब एक दशक से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद यूरोप की उच्चतम मानवाधिकार अदालत ने फैसला सुनाया है कि रशिया इसके लिए जिम्मेदार है। यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स के अध्यक्ष मटियास घ्योमार का कहना है कि रशिया ने विमान में सवार यात्रियों के जीवन के अधिकार का उल्लंघन किया है।
Was fired by a member of the Russian military crew of the Bakhtar or by a member of the DPR. It was not necessary for the court to decide exactly who fired the missile, since Russia was responsible for the acts of the Russian armed force and of the armed separatists. No measures were taken by Russia to accurately identify the intended target of the missile in breach of international human law. The killing of the civilians on board flight MH17 could not be described as a lawful act of war and violated the right to life under the convention.
यह फैसला 2014 और 2022 के बीच अदालत में दायर चार शिकायतों की जांच करने वाले एक व्यापक फैसले के हिस्से के रूप में आया है, जिनमें से तीन यूक्रेन से और एक नीदरलैंड से थी। 17 न्यायाधीशों के पैनल ने पाया है कि 2014 के बाद से रशिया ने यूरोपीय मानवाधिकार कन्वेंशन के कई घोर और अभूतपूर्व उल्लंघन किए हैं। इन उल्लंघनों में युद्ध के बाहर नागरिकों और सैन्य कर्मियों की न्यायेतर यानी एक्स्ट्रा ज्यूडिशियल हत्या, यातना, जबरन श्रम और नागरिकों को गैर कानूनी हिरासत में लेना शामिल है, लेकिन वे उल्लंघन इन्हीं तक सीमित नहीं है। मटियास घ्योमार का कहना है कि ये जांच परिणाम रूसी राज्य द्वारा किए गए उल्लंघनों के पैमाने को दर्शाते हैं।
Taken as a whole, the evidence presented a picture of interconnected practices of manifestly unlawful conduct by agents of the Russian state on a massive scale across Ukraine. This included a practice of military attacks that were variously indiscriminate, disproportionate, and targeted at residential areas in breach of international humanitarian law.
रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण के लिए यूरोपीय परिषद यानी काउंसिल ऑफ यूरोप से निष्कासित होने के तुरंत बाद सितंबर 2022 में यूरोपियन ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन छोड़ दिया था। इसलिए यह निर्णय काफी हद तक प्रतीकात्मक है, और क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का कहना है कि मॉस्को की योजना इसे नजरअंदाज करने की है। लेकिन यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की का कहना है कि यह एक ऐतिहासिक फैसला है और यूक्रेन के लिए एक निर्विवाद जीत है। पीड़ितों के परिवारों ने इस फैसले को न्याय की 11 साल की अपनी खोज में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया है। इस बीच रशिया ने युद्ध शुरू होने के बाद से यूक्रेन पर अपना सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है, जिसमें एक ही रात में 728 ड्रोन और 13 मिसाइलें दागी गई। 10 से ज्यादा यूक्रेनी क्षेत्र प्रभावित हुए, जिनमें सबसे ज्यादा प्रभावित लुत्स्क रहा, जो विदेशी सैन्य सहायता प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का कहना है कि रशिया के यह बढ़ते हुए हमले अब सैन्य लक्ष्यों तक सीमित नहीं है।
Russia is now massively and deliberately bombing Ukrainian cities from the air night after night. Last night we experienced some of the most massive bomb and rocket attacks since the beginning of the war. They are practically only targeting civilian sites. It is terrorism against the civilian population and has nothing to do with a war against military targets anymore.
हमलों के बाद प्रतिक्रिया देते हुए व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हाल ही में रुके हुए अमेरिकी नेतृत्व वाले शांति प्रयासों के बारे में अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। हाल के हफ्तों में रशिया द्वारा दागे गए फर्जी ड्रोनों की बढ़ती संख्या के साथ ऐसा प्रतीत होता है कि रशिया यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणालियों पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। यह खबर ऐसे समय में आ रही है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका एक संक्षिप्त विराम के बाद यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति फिर से शुरू करेगा। रशियन विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ाखारोवा का कहना है कि अमेरिका से हथियारों की आपूर्ति फिर से शुरू होने से हालात और बिगड़ेंगे।
After Washington's previously announced decision to suspend military supplies to the Kiev regime during the inspection of Pentagon warehouses, the United States made statements about their resumption. The consequences of such moves are yet to be assessed, but it can be said with certainty that the continuation of sending weapons to Ukraine wouldn't help, to put it mildly, bring about a peaceful settlement of the conflict, which the world community, including the West Wing, seemingly calls everyone for.
इस बीच ज़ेलेंस्की यूक्रेन के सहयोगियों से रशियन तेल और इसे खरीदकर रशिया के युद्ध को वित्त पोषित करने वालों पर कड़े प्रतिबंध लगाने का आग्रह कर रहे हैं। यूक्रेन के पुनर्निर्माण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से पहले इटली की यात्रा पर उन्होंने अमेरिकी यूक्रेन दूत कीथ कैलोग से मुलाकात की, जिसे उन्होंने हथियारों की आपूर्ति और वायु रक्षा को मजबूत करने के बारे में महत्वपूर्ण बातचीत बताया। यह पहली बार है जब अमेरिका यूक्रेन का समर्थन करने वाले यूरोपीय प्रभुत्व वाले देशों के समूह कोएलिशन ऑफ द विलिंग की बैठक में भाग ले रहा है कि वॉशिंगटन से और अधिक पैट्रियट वायु रक्षा प्रणालियां खरीदना चाहता है, जिन्हें उसके शहरों की रक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वह इस बिक्री पर विचार कर रहे हैं।
They would like it. They've asked for it. They're very rare indeed, you know, because a lot of systems have been sent to Ukraine. But they would like to. I know they made the request. We're going to have to take a look at it. It's very expensive system. It's a shame that we have to spend so much money on a war that would have never happened if I were president. That's a terrible, terrible war over there. And it's really a shame. It's a very sad, you know, when you talk about a system like that, highly sophisticated, tremendous amount of money, and they're doing it because they want to prevent death. They're getting hit hard, very hard. So we're looking at it.
SBS News के लिए सिडनी लैंग की इस रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद SBS हिंदी पर आपके लिए प्रस्तुत किया स्वाति शर्मा ने।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।